रुकू नंबर 5 से लेके आयत 123 तक अल्लाह ताला बनी इसराइल का तذکرہ हमारे सामने रखेंगे। तरतीब अगर आप पीछे से देख रहे थे तो सबसे पहले हिदायत की दुआ मांगी सूरह फातिहा में, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह बकरा में का जालिकल किताबु ला रईब फी। फिर तीन लोगों का तذکرہ व हिदायत के एतबार से, मुत्तकी, काफिर और मुनाफिक। फिर उसके बाद पहले इंसान की कहानी सुनाई गई, आदम अलैहिस्सलाम, और इंसानियत को उनकी ज़िंदगी का मकसद बताया गया। अब यहाँ से यहूदियत की बात क्यों शुरू हो रही है बनी इसराइल जो आज के दौर में यहूद है, क्योंकि इल्हामी मज़ाहिब में से ये सबसे ओल्ड रिलीजन है, सबसे पुराना मज़हब यही है। और असल में ये वो लोग थे कि जिनको अल्लाह ताला ने खिलाफत के मनसब पे फाइज किया था, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी बातें आ गईं कि जिसकी वजह से ये उस मनसब को संभाल ना सके। साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम वाउफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम वइय्या यफरहबून। ए बनी इसराइल, तुम मेरी मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो, और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई, और इसके साथ तुम पहले ही काफिर न बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर न फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो, और हक को बातिल के साथ खलत मलत न करो, और न हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है, और नमाजों को कायम करो, और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतामुरूनन नासा बिल बिर्री व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताकिलून। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद इसके कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम में इतनी भी समझ नहीं? और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। ये चीज बोझल है मगर डरने वालों पर। कौन होते हैं वो डरने वाले? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन आयात का टॉपिक है खुशियों की सतह पर जीने वाले झुक जाते हैं। यहाँ हमने जो चीज़ सीखी वो क्या है कि अल्लाह ताला किसी गिरोह से जब राजी होता है ना, या उनकी खैर चाहता है, तो उनकी तरफ पैगाम देने वालों को भेज देता है, जो लोगों को अल्लाह का पैगाम देते हैं। अपने दौर में ये मिशन अंबिया कराम के पास था, उनके बाद यही मिशन उम्मत के उलमा के पास आ गया। कुछ लोग इस दावत पे लब्बई कह के आगे बढ़ते हैं, ये लोग खुशियों की सतह पे जीने वाले लोग हैं। कुछ लोग कुछ सोच रखते हुए उस रास्ते से हट जाते हैं। उस सोच में जो सबसे बड़ी सोच होती है वो क्या है कि कहीं ये शख्स हमारे अकीदे ना बदल दे, कहीं ये शख्स हमें हमारे बाप दादा के तौर तरीकों से ना बदल दे। और ना उनको बाप दादा के तरीकों का पता होता है, ना उनको कुरान का मिजाज पता होता है। ऐसे ही दो किस्म के लोगों का अल्लाह ताला ने इन आयात में तकाबुल किया। अल्लाह के नबी की दावत जब मदीना में उठी तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि यहूद जो कब से मुंतजर थे, दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह उस पैगम्बर को भेज कि जिसके वादे तूने हमारी किताबों में किए हैं वो आए, और हम उसके साथ मिलकर इन काफिरों से लड़ें, इस्लाम के खिलाफ जितनी सरगर्मियां हैं हम उसका मुकाबला करें। लेकिन हुआ क्या, तासुब आगे आ गया, किसी के सामने उनकी दौलत आ गई, किसी का बाप दादा परस्ती आ गई, और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। ऐसे ही लोगों को फिर कुरान पाक में बार बार दावत दी जा रही है। ये जो आयतें हैं ना, ये मदीना के यहूद से खिताब की गई हैं। या बनी इसराइल, ओ बनी इसराइल, ये कौन थे? अल्लाह के नबी के दौर में वहाँ मौजूद लोग थे, ये अपने दौर के मुसलमान लोग थे, लेकिन इनका दीन एक रस्मी दीन बन गया, तकलीदी दीन बन चुका था। दीन की रूह खत्म हो गई थी, सिर्फ नमाज पढ़ने को दीन कहते थे लेकिन नमाज के अंदर रूह नहीं थी। सदका खैरात को दीन कहते थे लेकिन वो देना दुनियावी मुफादात या लोगों की नजरों में बड़ा होने का था। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो, तुम अगर अपनी मसलहतों की तराजू में हक को परखोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। और हकीकत भी यही है कि हक सिर्फ उसको समझ आता है जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में एक तलब हो, एक तड़प हो कि मुझे बचना है, मुझे आग से बचना है। मिसाल दूंगी कि अगर कोई बीमार हो हम में से, अल्लाह ना करे, और उसके सर में शदीद दर्द है, या उसको बुखार है, या पेट में दर्द है, आप बताइए कि जूं ही उसको दवा मिलेगी या डॉक्टर नज़र आएगा तो वो क्या कहेगा? आपने कहाँ से पढ़ा? आप जो दवा देंगे वो दिखाएं क्या उसका केमिकल है? अच्छा बताएं कि क्या ये दवा जो है, ऐसे सवाल करेगा? कभी किसी ने इमरजेंसी वार्ड में जाके किसी को ऐसे सवाल करते देखा कि डॉक्टर साहब पहले जरा ये कहिए और दीजिए? वो तो बेचैन होगा, वो तो स्ट्रेचर पे लेट जाएगा कि खुदा के लिए मेरा पेट काट दो लेकिन मुझे मरने से बचा लो। बस यही है तड़प। जिस दिल में हिदायत की तड़प होती है ना, फिर अल्लाह उसको सुनवा देता है। मक्का वालों में से भी जिनके दिलों में तलब थी ना, अल्लाह ने उनको सुनवा दिया, और मदीना में जाकर भी यही कहानी हुई। अब ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला आखिरत का ख्याल दिलाते हैं। अगली आयतों को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि वक्त के साथ साथ यहूद के दिल में एक खुशफहमी पैदा हो चुकी थी, और वो क्या थी कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और सबसे ज्यादा पैगंबर हमारी नस्ल में से आए, लिहाजा अब हम कुछ भी कर लें हमें कुछ नुकसान नहीं। नबी आएंगे कयामत के दिन और हमें बख्शवा लेंगे, उनकी सिफारिश हमारे काम आ जाएगी, और इसी तरह हमारे बदले में अगर डालना हुआ तो किसी और को डाल दिया जाएगा आग में। यानी अकीदे आखिरत खुशफहमियों की नजर हो गया था। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलादे याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे दी। उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा न दे सकेगा और ना ही इसके बारे में कोई सिफारिश कबूल होगी और ना ही कोई बदला इसके इवज लिया जाएगा और ना ही वो मदद किए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, और निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को चीर दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने इसमें डुबो दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजज़े अता किए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कैद करो, तुम्हारी बेहतरी रब के नजदीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की और वो तौबा कबूल करने वाला है। और तुम उसे भी याद करो, तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे, जिस गुस्ताही की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा किया और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दीवी पाकीजा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। यहां तक की जो आयतें हैं इसका उनवान है तारीख बनी इसराइल की, सबक उम्मते मुस्लिमा को लेना है। हमने पीछे देखा कि बनी इसराइल जो थे अपने वक्त के चुने हुए लोग थे, लेकिन उनके अंदर एक खुशफहमी आ गई थी कि हम नबियों की औलाद हैं, और नतीजा क्या हुआ कि अमल वाली जिंदगी छोड़ के सिर्फ खुशफहमियों वाली जिंदगी आ गई, और आखरत के असर को जायल करने वाली वो तमाम चीजें उन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली जिसने उनको बेअमल कर दिया। और वो क्या था, फुलां बुजुर्ग आएंगे और हमें बख्शवा लेंगे और हम चले जाएंगे जन्नत में। किसी ने कहा कि बाप के बदले में बेटे को आग में डल दिया जाएगा, कहीं मालिक के बदले में गुलाम को। अल्लाह ताला ने उनके आखरत के अकीदे को दुरुस्त करते हुए उनकी तारीख के कुछ ऐसे वाकयात सामने रख दिए कि जो तकरीबन 40 साल के अरसे पे मुहित थे, और अल्लाह के नबी के दौर के जो यहूद थे उनको आईना दिखाया जा रहा है कि देखो तुम इस नबी को नहीं मानते, हालांकि ये तुम्हें तुम्हारी वो कहानियां सुना रहा है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता थी। हमारे लिए इस हिस्से में से जो चीज़ काबिले गौर है और अल्लाह ताला की जो निशानियां हमने इसमें देखनी है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला लोगों को चुनता है अपने दीन के लिए, तो पहली बात तो क्या है कि कियामत का आना भी एक निशानी है। वत्तकू यौमन, क्यों? इसलिए कि दुनिया की हर चीज़ एक एंड चाहती है, रात होती है तो दिन आता है, दिन आता है तो रात जाती है, बचपन जवानी, जवानी बुढ़ापे में बदलती है, हर चीज़ जोड़े में है, सिर्फ एक चीज़ है, एक ज़ात है जो बेजोड़ होनी चाहिए, और वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह वितर है, अल्लाह अकेला है। इसी तरह इस दुनिया का एक जोड़ा होना चाहिए और वो आखरत है। फिर इसी तरह दुनिया में दरख्त जो बेजान चीज़ है, हज़ारों साल जीते हैं, कई कई साल इनकी उम्रें होती हैं, इसी तरह आप देखिए कि समंदर कब से है, आसमान कब से है, ज़मीन कब से है, लेकिन वो मखलूक जो सबसे आला थी, अशरफुल मखलूकात इंसान, क्या वो सिर्फ 60-70 साल जी के दुनिया से चला जाए? अकल को ये बात लगती? यानी जिसके लिए सब कुछ बना, वो चीज़ें वो सबसे मुख्तसर ज़िंदगी पाए, और जो चीज़ें उसकी खिदमत के लिए हैं वो सदियों से हैं। आसमान को ही देख लें कब से है, चाँद कब से है। तो ये बांट इस बात का तकाजा करती है कि एक नया जहान बसे, कि जिसमें ये इंसान जाए और वहाँ ये उतनी ही लंबी उम्र पाए जितनी आसमान ने पाई, जितनी ज़मीन ने पाई। आगे जाके आप पढ़ेंगे, मा दामत इस समावात, अल्लाह ताला कहते हैं जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे तब तक वहाँ लोग मौजूद रहेंगे। तो क्या ये आखिरत का दिन एक निशानी नहीं है जो इंसान को रखता है? शाहीन जो होता है 70 साल तक जीता है, 40 साल की उम्र में उसके पर कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो चुकी होती है, उसकी पकड़ने की जो ताकत है पंजों में वो ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसे मरहले से गुजरता है ऊंचे पहाड़ों पे जाके। अल्लाह अकबर, मुझे तो लगा कि वाकई बात है कि माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की वो कदर ही नहीं इंसान कर पाता, लेकिन कायनात के अंदर फैली हुई एक एक चीज़ इंसान को तदब्बुर की दावत देती है। तो लिहाजा हम भी अपने आप को चेक करेंगे कि हमारा अल्लाह ताला के साथ कैसा मामला है। आगे देखेंगे, वाइस कुल नदखुलू हाजिल करिया, और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो, और जुबान से खित्ततुन कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ़ फरमा देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। फिर इन जालिमों ने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाली, हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले, हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया, और हमने कह दिया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। और जब तुमने कहा है मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया, बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। इन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई, और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को ना हक कत्ल करते थे, और ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा था। यहाँ तक इन आयतों का हम टॉपिक लिखेंगे, शुक्र के बदले ना शुक्री। इन आयात में हमने बनी इसराइल की एक ख़ास आदत को देखा, और वो क्या कि अल्लाह की वो नेमतें जो बिन मांगे इनको मिलनी थी इनको मिली, लेकिन इन्होंने उसकी ना शुक्री की और ज़मीन की पैदावार मांगी। क्या सिर्फ इस वजह से अल्लाह ताला का गज़ब इन पे आया कि इन्होंने ये ककड़ी, साग, गेहूँ, मसूर मांगा था? नहीं, असल बात क्या है कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को एक बा मकसद कौम बनाना चाहता था, इनको उस पैगाम के लिए चुना था जो अम्बिया कराम का मिशन था, लेकिन ये खाने पीने के पीछे लग गए, अपने बड़े मकसद को छोड़ के छोटे कामों में लग गए, और वो क्या था कि हमें टेस्ट चाहिए। जब किसी कौम पे जवाल आता है ना, तो उनकी सारी कोशिशें जो है ना वो खाने पीने में लग जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो बड़े मकासद पे नहीं जीते। मसलन आज इस दुनिया में भी देखिए कि वो लोग जो बहुत तरक्की याफ्ता कौमों के नाम से मशहूर हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, चाहे उनको दुनिया का कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई छोटा या बड़ा, लेकिन वो दिन रात काम करते हैं। और अमूमन हम अपने आप को अगर यहाँ टैली करके देखें, आज हम मुसलमानों का क्या हाल है, एक आम खातून खाना की ज़िंदगी कहाँ गुजरती है, औरों को छोड़े अपना देख लें, हमारी ज़िंदगी का अक्सर वक्त कहाँ गुजरता है? हमें वक्त क्यों नहीं मिलता? हम कहीं सीखने सिखाने के लिए क्यों नहीं जा सकते? हम दूसरों को अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें खाना पकाना है, और सिर्फ खाना पकाना नहीं, संभालना, खरीदना, फिर जितना खाना आता है उतना फैलता है, उतना ट्रैश निकलेगा, फिर उतना खाना जो खाएंगे उतने ज़्यादा बाथरूम बनाने पड़ेंगे, फिर उतनी सफाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैसा तो नहीं हो गया कि हम भी पेट के गुलाम हो गए? आज वो उम्मत कहाँ खो गई? एक एक दावत में हमारे खानों की कुल लिस्ट देख ले तो खुद ही शर्म आने लगती है। जब इंसान नाशुक्री की नज़र से देखता है ना, तो वो ये कहता है क्या खाऊं, और जब वो शुक्रगुजारी की नज़र से देखता है तो कहता है अल्लाह मैं खा लूं, हक तो नहीं अदा करूंगा, कल आप इसका हिसाब तो नहीं लेंगे। फिर वो कैफियत आती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गर्मियों की दोपहर में भूख प्यास के बाद जब दूध में पानी डाल के, जिसको आज आप लस्सी कह लें, पीने के करीब थे और घूंट मुंह में नहीं गया अभी, और हाथ से ग्लास वापस रख दिया। पूछने वाले ने पूछा कि उमर क्या हुआ, पिया क्यों नहीं? कहा बस एक ख्याल आ गया कि ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे कह दे कि या उमर, तेरी सारी जिंदगी की नेकियों के बदले में मैंने फलां गर्मी के दिन में तुझे ठंडा दूध पिला दिया था, जा आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं और मेरी सारी नेकियां ज़ाया ना हो जाए। मैं इस जगह ज़रूर बात करना चाहूँगी कि आज हम अपनी औलादों को और अपने आप को जिस तर्ज से पाल रहे हैं ना, इसका अंजाम खैर नहीं है। तरह तरह की बीमारियों को देख लें और बच्चों का जो नाफरमान होना और माँ बाप के आगे जुबान खोलना और उनके लिए उनके दिलों में आजी ना होना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा ज़्यादा खिलाना पिलाना भी है। हर वक्त जब हमारी ज़िंदगी का यही फोकस रहेगा तो फिर कैसे वो नस्लें तैयार होंगी जो भूखी रह सकें। ये रमज़ान का महीना तो हमें मुजाहिद बनाने के लिए आता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि तुम्हें कई दिन ना मिले खाना, तो फिर जाओ उस ऊँट की तरह जो कई कई दिन भूखा पे असर रहता है। हमारा हाल क्या है कि पहले भूख की वजह से चल नहीं सकते, फिर ज़्यादा खाने की वजह से चल नहीं सकते, फिर बाथरूम में जाना होता है इसलिए ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, फिर उसके बाद कितनी मजबूरियाँ। क्या हम अपने दिल में इस चीज़ का एहसास पैदा नहीं करते कि जो खाते हैं इसका हक कैसे अदा करेंगे? मैं तो कभी भी कहीं जाऊँ और इतने खाने में कहती हूँ हक कब अदा होगा, खाते हैं अल्लाह की नेमतों को, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बल्कि जब ज़्यादा खाते हैं तो उस दिन ज़्यादा ही नाफरमानियाँ करते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ अपने लिए नियत करें कि कम से कम इस रमज़ान के महीने में खाने को सादा कर लें, मुख्तसर कर लें। और आप इस कुरान के सफ़र से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, या आपकी और साथी भी अगर उठाना चाहती हैं, सिर्फ एक छोटी सी टिप कर लें कि चैनलाइज कर लें। हम जब किसी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं ना, तो वो काम वैसे भी हो जाता है। मतलब देखिए कि पकाने खाने में हम इतनी चीज़ें डाल देते हैं कि बाद में वो एक से दूसरी चीज़ खुद ही क्लैश कर रही होती है। तो इस पे ज़रूर सोचने की बात है कि जितना हम खाते हैं क्या हम उतना हक भी अदा करते हैं। इस हिस्से में से ज़रा अल्लाह ताला की कुछ निशानियों को हाईलाइट कीजिए। पहली बात, फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरता, ये हिस्सा इसको देख लें आपके सामने, बस उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। पत्थरों में से पानी का निकलना, ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इसका तस्करा आगे वाले रुकू, आगे एक दो रुकू के बाद भी आने वाला है। दूसरी निशानी है इसमें बकल, साग। आप में से किस किसने साग कभी खाया है या पकाया है? कभी कुछ सोचा? ये चारों लफ्ज़ों को हाईलाइट कीजिए, चारों चीज़ों के बारे में भी तदब्बुर करना है। साग नहीं है तो धनिया ले लें, पुदीना ले लें, कोई सब्ज़, हर ग्रीन सब्ज़ी, ब्रोकली ले लें। मैं तो उसको देखती रहती हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता खाऊँ, ऐसा लगता है कि एक पूरा दरख्त है जो मेरे अंदर जा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह देखिए गेहूँ, गंदम, क्या होता है दाना, उसको खोल के देखें, छुएं, फील करें। देखें ये अगर आप वाकई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। कल हम वॉक कर रहे थे तो हम पौधों के पास से गए तो हम फील कर रहे थे फूलों की नरमी को, पत्तों को कैसे मुड़े हुए, ये सब किसके फैसले हैं। और प्याज को तो देख के सुभान अल्लाह, आसमान को याद करिए, एक एक परत उतारते जाएं, यही है आपके आसमान तबक। और अब किचन में काम करने का अंदाज बदल जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला। चलिए आगे चलते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, मुसलमान हो, यहूदी हो या नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, इनके अजर इनके रब के पास हैं, इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई उदासी होगी। इस आयत का टॉपिक क्या है? मुसलमानों, किसी खुशफहमी में ना रहना। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों का नाम दूसरे मजाहब के साथ लिया है और सबको इकट्ठा कह दिया है कि जन्नत में जाने के लिए ना तो किसी को अपना मुसलमान होना काफ़ी होगा, मुसलमान कहलाना, किसी का अपने आप को यहूदी कहलाना या नसरानी या साबी कहलाना जन्नत में जाने का सबब नहीं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अमल सवाले हैं। कुछ लोग ये खुशफहमी रखते हैं कि चूँकि हम मुसलमान हैं और चूंकि हम उम्मत मुस्लिमा में से हैं तो लिहाजा फिर अब हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इस खुशफहमी को ख़त्म कर दिया। अल्लाह को खुशफहमियों वाली जन्नत नहीं देनी तुम्हें, अमल सवाले वाली जन्नत देनी है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। शुरू में कुछ लोग अमल की बुनियाद पर जन्नत की खुशखबरियाँ पाते हैं, अशरा मुबशरा कहलाते हैं, बाद में बाकी आने वाले लोग उनसे निस्बत की बुनियाद पे जन्नत में जाना चाहते हैं। कुछ लोग नेकियां कर कर के मेहनत करके जन्नत के काबिल होते हैं और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि चूंकि हम उनके रिश्तेदार हैं, चूंकि हम उनके खानदान से हैं, चूंकि हम उनकी कौम से हैं, चूंकि हम उनकी बिरादरी से हैं, तो बस वो हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ने कहा ऐसा कोई दीन नहीं है मेरे पास, तुम जिसको मर्जी अपना बुजुर्ग बना लो, जिसको मर्जी तुम बड़ा बना लो, जन्नत में जाते वक्त तुम्हें तन्हा होना होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह के नबी, क्या आप मुझे क़यामत के दिन याद रखेंगे? इतनी जो मोहब्बत करते हैं मेरे से, तो क्या क़यामत के दिन याद रखेंगे? कहा आयशा, वहाँ तीन मोड़ ऐसे आने वाले हैं कि ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई एक किसी दूसरे को याद नहीं रखेगा, और वो मीज़ान के पास जब नामे अमल तोल रहे होंगे और जिस वक़्त सहीफे हाथों में दिए जा रहे होंगे दाएं या बाएं हाथ में, और पुल सरात के पास जब कोई गुजरेगा, हर एक को ये फिक्र होगी कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो आयशा, ये तीन वक्त ऐसे हैं कि मैं तुझे भी याद नहीं रख सकूंगा। जब अल्लाह का नबी याद नहीं रखेगा तो फिर कौन किसी को याद रखेगा? हमने भी अपने लिए यही अमल की बात करनी है। देखिए, कदम चलाइए, सिर्फ एक कदम उठाने की देर है। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा आपने क्या किया, अल्लाह ये देखेगा आपने क्या करने की कोशिश की, आपके हालात क्या थे, आपके वाकयात क्या थे। जो कर सकते हैं ना वो कर लें, और फिर अल्लाह से जन्नत मांगे कि अल्लाह हक तो अदा नहीं हुआ लेकिन तू जन्नत अदा कर दे। व इस अखस नामी साखकुम व रफा नाफो ककुम तूर, आयत नंबर 63। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच जाओ, लेकिन तुम इसके बाद भी फिर गए। फिर अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम नुकसान पाने वाले हो जाते। यकीनन तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। फजल ना हनका लल्ली मा बई न यदईहा व मा खल्फहा, इसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत का। आयत नंबर 63 से 66, इसका उनवान है ईमानी अहद। इन आयत में बेसिकली बनी इसराइल के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए और तौरात में जो इनसे वादे लिए गए थे लेकिन बाद वाली कौमों ने उसको कैसे तोड़ दिया। इसी में हमने एक किस्सा देखा असहाबे सब्त का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की एक कौम थी, दरिया के किनारे रहते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। आजमाइश क्या थी कि हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ सकते क्योंकि इन्होंने इसको अपने लिए होली डे मुकर्रर किया था। और आज भी ये जो होली डे का तसव्वुर है ना हमारे यहाँ, हम तो छुट्टी कहते हैं ना, लेकिन होली होली से है, यानी रिलीजियस डे जिसको आप कह लें। ये अलग बात है कि शायद ज़्यादा गुना उसी दिन पे होते हैं, लेकिन बहरहाल इनको मछलियाँ पकड़ने का हुक्म नहीं था। आप ना पकड़ते या खुल के पकड़ लेते तो इतनी बड़ी पकड़ ना आती, लेकिन इन्होंने एक हीला किया। और वो क्या किया कि समंदर के किनारे घड़े खोद दिए, पानी जोश में आता था तो पानी बाहर जब आता पानी वापस जाता, लेकिन मछलियाँ दरिया में गिर उस घड़े में गिर जाती। अंदर ये जाल लगा चुके होते थे, जुमे की रात को जाल लगाते, हफ्ते को मछलियाँ उसमें फंसती और इतवार की रात जो ही शुरू होती जाके पकड़ लाते। जब लोग पूछते कि भाई ये क्या किया तुमने, तो हीला कर दिया, तो कहते नहीं हमने तो हफ्ते को कुछ किया ही नहीं, लगाया जाल जुम्मे को था, मछली इतवार को पकड़ी। अल्लाह को इनका ये हीला पसंद नहीं आया। अक्सर हम ये कहते हैं ना मछलियाँ पकड़ने की वजह से बंदर बनाए गए, तो झूठ है, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात जब आप नॉन मुस्लिम्स को बताएंगे तो कहेंगे क्या हुआ, मछली ही पकड़ी थी ना, कुछ शराब तो नहीं बेची? नहीं, अल्लाह को जो बात इनकी बुरी लगी वो क्या थी कि इन्होंने हीला किया। देखिए, बंदा गुनाह करे और डरे, अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह तौफीक दे देता है उसे निकलने की, लेकिन बंदा गुनाह करे और ना डरे, ये बंदे के दिल पे मोहर लगने वाली कैफियत है। और गुनाह को लीगलाइज कराना, गुनाह को अपने जस्टिफाई करना, उसको जायज़ करार देना कि आज के दौर में जी गुजारा ही नहीं होता, जी सब कर रहे हैं और कुछ नहीं होता, दीन इतना सख्त नहीं है, ये जुमले अल्लाह को इतने बुरे लगते हैं कि बाज़ दफ़ा इसकी वजह से अल्लाह की पकड़ आती है। इस हिस्से में भी हमने निशानी देखी। पहली बात तो वही है, कूनु क़िरादतन ख़ासईन, क्या ये निशानी नहीं? एक ज़ात जो बच्चे को माँ के पेट से इंसान के रूप में निकाले और बाद में उसको बंदर बना दे, और ये निशानियाँ उम्मते मुस्लिमा में भी जाहिर होंगी। अल्लाह के नबी की वाज़ रिवायात मिलती हैं कि जब दुनिया में गुनाह आम हो जाएंगे कुछ, तो उस वक़्त उम्मते मुस्लिमा के भी कुछ लोग बंदर और खिंजीर बनाए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है और अल्लाह ताला हमें नसीहत लेने वाला बना दे। अब आगे वो वाक्या है जिसकी वजह से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वइस काल मूसा ली कौमी ही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। उन्होंने कहा ए मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसकी माहियत बयान करे। आपने फरमाया सुनो वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो और ना बच्चा बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया क्या है बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह बयान करे कि इसका रंग क्या है। फरमाया वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला इसका रंग है। वो कहने लगे अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें इसकी मजीद माहियत बताए। इस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा अब आपने हक वाजे कर दिया, गो वो हुक्मबरदारी के करीब न थे लेकिन इसे माना और वो गाय ज़िबा कर दी। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर इसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था, हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठे। इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां दिखाता है। यहाँ तक ये वाक्या था, आयत नंबर 67 से 73। इसका उनवान क्या है? कट हुज्जतियाँ, अल्लाह को पसंद नहीं। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने सीधा सा हुक्म दिया था कोई भी गाय लेते ज़िबा कर देते। बुनियादी तौर पे इसके पीछे फिर वही कहानी है। इस वाक़े के तीन वजूहात थी। एक वजह क्या थी कि मिस्रियों के साथ रहते रहते बनी इसराइलियों के दिल में गाय की तज़ीम आ चुकी थी, गौ माता परस्ती का शिकार हो गए थे। जैसे कुछ लोग अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की वजह से उनके रस्मों रिवाज से मुतासिर होते हैं, इसी तरह इनके साथ भी यही मामला हुआ। दूसरी वजह क्या हुई थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर अकीदे आखरत का तसव्वुर। तीसरा एक वाक्या भी हो गया कि एक शख्स कत्ल हो गया, भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया ये सोच के कि इसकी जायदाद मैं ले लूंगा। वही बात है कि मुर्गी के पेट से सारे अंडे पहले ही निकाल लूं। वही जायदाद जो उसको चचा के मरने के बाद मिलने ही वाली थी वो उसने खुद जल्दी लेने की कोशिश की। इन तीन वाक्यात की बुनियाद पे एक सादा सा हुक्म था, कोई भी गाय ले लो। अल्लाह ताला दिखाना चाहते थे, एक तो गाय की मोहब्बत निकालना चाहते थे, क्योंकि जब इंसान अपने हाथ से छुरी चला देता है अपनी मोहब्बत पे तो फिर उसकी थोड़ी सी अहमियत कम हो जाती है। इसी तरह मुर्दा जिंदा होगा तो पता चलेगा कि मरने के बाद जिंदा होना है। हुज्जतें क्यों कर रहे थे ये इतनी जो आपने सुनी? क्योंकि इनका बस नहीं चला था कि हम गाय को क्यों कत्ल करें, ये तुम्हारी खुदा है। इस पे अल्लाह ताला ने फिर इनको पकड़ लिया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो इन्होंने बहस मुबाहसा किया, इससे पता क्या चलता है कि ना मानने के 100 बहाने। बल्कि इसका आप आसान ये भी लिख सकते हैं टॉपिक इस हिस्से का कि ना मानने के 100 बहाने। चले उनकी तो वो गाय थी, हमारी भी कोई गाय है। अब देखिए कि कितने ही लोग हैं ना जो कितनी ऐसी चीज़ों के अंदर अपने आप को मुलव्विस किए होते हैं कि वो वाकई फिर इंसान के लिए एक आजमाइश और एक फितना बन जाते हैं। यहाँ इस हिस्से में से जो अल्लाह ताला की निशानियों को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो नोट कीजिएगा, बकरा। अब गाय एक निशानी कैसे होती है? आपको पता है कि गाय भैंस इनके अंदर क्या कुछ हो रहा है, कभी आपने देखा कि नहीं? यानी इस गाय के जिस्म के अंदर कितने सिस्टम है। हकीकत है कि कोई चीज़ बेकार नहीं। तदब्बुर की निगाहों से इन चीज़ों को देखें तो हैरान हो। कभी मौका मिले तो चले जाएं बुचर शॉप पे, जब जाते हैं तो जब गाय कटती है ना तो उसके अंदर से पूरा उसका सिस्टम देखें। हमें आदत नहीं रही, हमारा माइंड तहकीक वाला और तदब्बुर वाला रहा ही नहीं, वरना हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ निगाह से इस कायनात को देखते। अब अगला रुकू बेसिकली वो इसी वाक्य का एक मुहर्रिक है। क्या थुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह के डर से गिर गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल न जानो। आयत नंबर 74। इसका उनवान क्या है? पत्थर दिल इंसान जो निशानियों पर गौर न करे। पत्थरों की तीन कैफियात का यहाँ जिक्र है कि पत्थर रोते भी हैं। चश्मे जो निकलते हैं वो क्या है? पत्थरों के आंसू हैं। लैंडस्लाइडिंग होती है तो पत्थर गिरते हैं, ये खशियत के साथ झुकना है। और इसी तरह आप नहरों का फूटना खैर का फूटना है। इंसानों के अंदर ऐसी तमाम صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وقت کی گرد پڑ چکی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے, بظاہر ہمیں بڑا برا لگتا ہے, ٹوٹ جاتے ہیں ہم, لیکن اس ٹوٹنے کو برا نہ کہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کے اندر سے خیر نکلے گی. بعض دفعہ زلزلوں کے بعد پہاڑوں کے اندر سے مائنز معدنیات نکلتے ہیں, بعض دفعہ لاوا جو پھٹتا ہے وہ گرتا ہے باہر کی زمین میں تو اس سے کتنی خیر آتی ہے. ہمارے لیے اس حصے میں جو تدبر کرنے کی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر یہ صلاحیتیں کیسے رکھی. آپ پہاڑوں کے اندر جا کے دیکھیں آپ کیا کیا سیکھتے ہیں, کیسے کھڑے ہیں, کیسے فارم ہیں, کتنے اسٹرانگ ہیں اپنے حال میں. اگر پتھر نرم ہو جائیں اور اس پہ قدم رکھیں اور وہ آپ کو اندر ہی لے جائیں تو انسان خطرے میں ہے نا. پہلے دن کا سبق یاد کریں, کائنات سے جو سبق لیے تھے, یہ کائنات بول بول کے سکھا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے اندر بھی حصہ ہے, یہ پتھر چلتے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا پتھر تھا جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا, تو ان کے اندر حص موجود ہے. اس کے آج یہ پتھر جو ہیں یہ چل رہے ہیں. میں ایک جگہ کے ٹرپ میں تھی تو وہاں ہمارے جو ہوسٹ تھے تو وہ ان کا کچھ مطلب جیولوجی سے تعلق تھا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر واقعی چلتے ہیں اور ایک حصے میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے جگہ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی صلاحیت ہے نا. یہ تو روتے ہیں اللہ کی بات کو سن کے, ہم کتنا روتے ہیں, ہماری آنکھوں کے آنسو کہاں جاتے ہیں, ہم اپنا پانی کہاں بہاتے ہیں, ہمارے دلوں میں کتنی خشیت ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارا معاملہ کیسا ہے, اس کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا ہم غور کریں گے, تدبر کریں گے, اتنا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے قرب حاصل ہوگا. اب وہ غفلت والی زندگی چھوڑ کے اللہ والی زندگی بتانی ہے. آپ سیر کے لیے بھی جائیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ کا دل چاہے گا کہ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں. آپ واقعی اس کائنات سے سبق لیں گے. پہاڑ, دریا, سمندر, یہ سب کچھ بول بول کے آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے, لیکن کچھ دل پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں. ایسے ہی پتھر دل وہ لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی کا واسطہ تھا, اور جن سے اللہ کے نبیوں کے واسطے پڑھتے رہے وہ سخت دل لوگ ہوا کرتے تھے. سوچا کہ شاید گائے کا واقعہ سن کے ان کے دل نرم ہو جائیں, اتنی بڑی بات سنی تو مان جائیں, کہا نہیں. اب یہاں سے جو اگلا آیت ہے اس میں مسلمانوں کو خطاب ہے, آیت نمبر 75, بلکہ خاص طور پہ اللہ کے نبی اور لیکن عام طور پہ پھر مسلمانوں کو خطاب ہے. مسلمانوں, کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں, حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. کیا کیفیت ہے ان کی؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں, اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں, کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر حجت ہو جائے گی, کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہر چیزوں کو اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. آیت نمبر 75 سے 77, اس کا عنوان ہے پہچاننے کے باوجود بھی انجان بنے. ان آیتوں میں دراصل مدینہ میں رہنے والے یہود کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی کو پہچان چکے تھے, یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں باتیں تھیں, جس کی خوشخبریاں دی گئی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نہ مانا. کیوں نہ مانا؟ تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا اور دوسری سے کیوں آیا. اور اس طرح کے لوگ پھر نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی نشانی آ جائے یہ اس کو دیکھ کے سٹبن رہتے ہیں. بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں, یہ نشانیوں کے قسم ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ جو ان یوزول حالات ہوتے ہیں, انسان کو کسی مشکل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے, عافیت دے دیتا ہے. اب اس کے بعد جو مطلوب ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, کیا کہیں, یو مینو لکم, ایمان لے آؤ. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں, پچھلی زندگی پہ غور کریں, کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا کہ جس وقت آپ نے یہ سوچا کہ یہ بات اب ہو گئی نا تو بس میں اللہ کو پہچان لوں گی؟ ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کے ساتھ, آج یہ کام میرا ہو جائے تو بس میں مان جاؤں گی کہ پھر اللہ میری سنتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسی بیماری آئی کہ جس میں بچنے کی بالکل امید نہ ہو اور آپ کے بس اگر اس بیماری سے بچ گیا نا فلا یا میں بچ گئی, بس میں تو سیدھی بس اب اللہ کی طرف چل پڑوں گی, لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, پھر پتھر دل, پھر دنیا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے نہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ہونے والے سوچے سمجھے واقعات کو ایک اتفاق کا نام دے دیتے ہیں. ہم سب کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے.